आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 और इस कविता का नाम है आत्मकथ्य। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानेंगे, यानी लेखक परिचय पढ़ेंगे और फिर हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 26 पर आ जाइए, ठीक है? तो शुरू करते हैं लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। देखिए, ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1889 यानी 1889 में वाराणसी में हुआ था, ठीक है? और वहीं पे एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, क्वींस कॉलेज, जहां वो पढ़ने गए, लेकिन पारिवारिक स्थितियां या कुछ ऐसी स्थितियां उनके सामने आई कि वो आगे नहीं पढ़ सके और उनकी शिक्षा सिर्फ 8वीं तक ही हो पाई वहां पर। उसके आगे की शिक्षा जो थी वो उन्होंने अपने घर पर रहकर ग्रहण की। भाषा का जो ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत, फारसी या किसी भी भाषा का ज्ञान, वो सब उन्होंने घर पर रहकर ही पढ़ा। छायावादी जो कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद को मुख्य माना जाता है। देखिए, जिनके पढ़ाई में इतनी दिक्कतें आई थी और आज वो कितने प्रसिद्ध कवि हैं, लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं उनकी रचनाओं के लिए, उनकी भाषा शैली के लिए, हर चीज के लिए। तो इनका निधन 1937 यानी 1937 में हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। देखिए, अब अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, ये कौन सी इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? काव्य कृतियां यानी कविताएं, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति, बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जिसके लिए जयशंकर प्रसाद जी को क्या मिला था, कौन सा सम्मान मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है? कौन सा सम्मान मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जयशंकर प्रसाद जी को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, तो आप कहेंगे कामायनी के लिए। अब ये तो उनकी कविताओं की बात हुई, लेकिन वे कवि होने के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, यानी गद्य की रचनाएं भी करते थे। और गद्य की बात करें तो उनके प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामिनी। वहीं उपन्यास की बात करें तो उनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। ऐसे ही आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है, यानी कहानियों का संग्रह है। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो प्रसाद जी हैं, इनका जो साहित्य जीवन है, जो इन्होंने साहित्य रचनाएं की हैं, वो किसका मिश्रण माना जाता है? कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज, है ना? एक तरफ उसमें कोमलता भी है और एक तरफ उसमें उग्रता भी दिखती, ओज गुण भी दिखता है ना? सॉफ्टनेस भी है और एक एग्रेसिवनेस भी है। सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण, यानी बहुत ही बारीकी से ये सौंदर्य को, प्रकृति को या अपनी कल्पना को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। इनकी कविताओं में हमें प्रकृति प्रेम भी देखने को मिलता है, देश प्रेम भी देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। और इनकी रचनाओं से ये स्पष्ट हो जाता है, यानी ये पता चलता है कि उनकी इतिहास और दर्शन में भी बहुत रुचि थी, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो उनकी कल्पना से भी जुड़ी हुई हैं और इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं, है ना। दोनों का मिश्रण करके, कल्पना और इतिहास का मिश्रण करके ही उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये लेखक परिचय हुआ। अब थोड़ा सा पाठ परिचय देखते हैं। पेज नंबर 27 पर आइए। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। तो देखिए, ये कविता क्यों लिखी प्रसाद जी ने, इसका वो कारण बता रहे हैं। प्रेमचंद जी एक पत्रिका का संपादन करते थे और उस पत्रिका का नाम क्या था? हंस। तो इस हंस पत्रिका में एक हर बार एक आत्मकथा विशेषांक निकलता था, यानी किसी लेखक की, किसी महान व्यक्ति की आत्मकथा उसमें होती थी। आत्मकथा यानी जो हम खुद की कथा लिखें, अपने जीवन के बारे में लिखें या अपनी कोई महत्वपूर्ण घटना लिखें, वो होती है आत्मकथा। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी से भी उनके मित्रों ने और आसपास के लोगों ने यह आग्रह किया कि इस बार इस आत्मकथा विशेषांक के लिए आप अपनी आत्मकथा लिख कर दें और हम उसे छापेंगे। लेकिन प्रसाद जी इससे सहमत ना थे, वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। तो वो क्यों नहीं लिखना चाहते थे, ये तर्क उन्होंने क्या दिए, क्या कारण बताए नहीं लिखने के, उसी वजह से एक कविता पैदा हुई, उनके मन में भाव आए, उन्होंने कविता के रूप में लिखे, जो कि ये कविता है आत्मकथ्य। यह कविता फिर 1932 यानी 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कि लेखक ने, प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन क्यों नहीं लिखी उसके कारण को स्पष्ट करने के लिए कविता जरूर दे दी थी। छायावादी शैली में लिखी गई है कविता, इसीलिए इसमें जीवन का जो यथार्थ है, जो अभाव है ना, यथार्थ यानी जो असलियत है, वास्तविकता है, या अभाव यानी जो कमियां हैं जीवन की, उसकी बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। और छायावादी होने के कारण इसमें सूक्ष्मता, क्योंकि बहुत छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज को भी इसमें व्यक्त किया जाता है, वो यहाँ देखने को मिलती है। और प्रसाद जी ने इसे और अच्छा बनाने के लिए कई सुंदर और नए शब्दों का, नए बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। ठीक है, तो ऐसे नए शब्दों का, अलग अलग बिंबों का सहारा लेकर उन्होंने ये बताया है कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो जीवन की कथा है वो एक साधारण कथा है, जैसे आम आदमी होता है, सामान्य व्यक्ति उसकी जीवन कथा होती है, वैसी उनकी भी है। कुछ अलग नहीं है, कुछ महान नहीं है, कुछ रोचक नहीं है जो लोग उसे जानेंगे तो लिखेंगे कि हाँ, जैसे होता ना, हम किसी महान व्यक्ति की अगर आत्मकथा पढ़ते हैं या उसकी जीवनी पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि इसने कितना महान काम किया, ऐसा हम भी करें, वैसा करें, उसकी वाह वाह होती है, उसकी तारीफ होती है। लेकिन प्रसाद जी को लगता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि लोग वाह वाह करेंगे या लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। वो एक बहुत साधारण सा जीवन जी रहे थे, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर, तो हमें इस कविता में क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ तो कवि की यथार्थ की स्वीकृति है ना, यानी जो वास्तविकता है, जो असलियत है, उसको कवि ने स्वीकार किया है। तो दूसरी तरफ जो ये कवि कितना महान है कि वो विनम्र होकर ये कह रहा है कि मैं तो महान हूँ ही नहीं, साधारण व्यक्ति हूँ, तो मैं कैसे अपनी कोई आत्मकथा लिख सकता हूँ। तो उसकी सरलता और महानता, विनम्रता, सब कुछ यहाँ देखने को हमें मिलता है। अब पेज नंबर 28 पर आ जाइए आप लोग, है ना। अब हम कविता शुरू करते हैं और फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। ठीक है, मधुप मतलब क्या होता है, वैसे भौरा होता है, तो यहाँ उन्होंने अपने मन को बताया है, मन रूपी जो भौरा है वो। क्या कहते हैं कवि कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने इस मन रूपी भौरे का प्रेम की जो होता है वो कहानी सुनाता है, हर व्यक्ति मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन का अपनी कौन कहानी अपनी यह। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं आत्मकथा इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हर एक व्यक्ति मन रूपी भौरे से अपनी कहानी सुनाता है। और फिर पत्तियों को जो मुरझा कर गिर रही हैं, जो झड़ रही हैं, उनको देखते हुए कवि कह रहे हैं कि आज जो है असंख्य पत्तियां, है ना, इतनी पत्तियां जिन्हें गिन भी नहीं सकते मुरझा कर गिर रही हैं, यानी अब जो जीवन लीला है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार जो अनंत नीलिमा यानी अंतहीन विस्तार है जो आकाश का, नीलिमा यानी वो आकाश के लिए दिया गया है, जो अंतहीन नीला आकाश है उसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। ठीक है, यानी कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में सब कुछ चंचल है ना, अस्थिर है, कोई भी स्थिर नहीं है, यानी परिवर्तन होता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। यहाँ हर एक व्यक्ति एक दूसरे का व्यंग मलिन उपहास करने में लगा हुआ, यानी हर किसी का मजाक उड़ा रहा है, उपहास उड़ा रहा है, उसकी दुर्बलता को कमजोरी को उभार रहा है और हंस रहा है, क्योंकि यहाँ हर किसी को दूसरे में तो कमी नजर आती है पर स्वयं अपने अंदर कमी नजर नहीं आती है। अपनी कमी कोई नहीं कहता, और यह जानते भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, मैं अपनी आत्मकथा कैसे कह दूं, है ना, क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं अपनी आत्मकथा कहूंगा, मुझ पे जो बीती है अपनी आप बीती सुनाऊंगा तो लोग उससे क्या करेंगे, आनंद लेंगे, है ना। ये देखिए आखिरी दो पंक्तियां इस जो मैंने अभी पढ़ी, तुम भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी तुम कहते हो, तुम भी ये चाह रहे हो कि मैं जो अपनी दुर्बलता है, जो कमजोरियां है, मेरी आप बीती है, मेरी कहानी, वो मैं कह दूं, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, है ना, क्योंकि मेरे जीवन में भी काफी दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, तो तुम लोगों को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और तुम ये देखोगे कि एक कवि का जीवन भी सुख और प्रसन्नता के बिना बिल्कुल खाली है, गागर रीति यानी कि खाली घड़ा जैसा होता है ना, खाली घड़े के समान मेरा जीवन है, यह देखकर तुमको आनंद आएगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझा मेरा रसले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊ मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिला खिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहां वे सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो जीवन का स्वप्न है, मतलब जो उनका जीवन है वो एक स्वप्न की भांति, एक सपने की भांति उनसे छल कर रहा है, दिखावा कर रहा है, जो कुछ उनके पास आता है या वो जिसे पाना चाहते हैं वो फिर उनको चिढ़ाकर उनसे दूर भाग जाता है, और यही उनके जीवन की विडंबना है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये जो भी कुछ मेरा जीवन खाली है इसका कारण मैं और मेरे आसपास के लोग ही हूँ, है ना, ये मेरी विडंबना है कि और मैं अपनी कमजोरियों को बताकर सबके सामने उसका बखान करके जग हसाई नहीं करवा सकता, यानी कि लोगों के बीच अपना मजाक नहीं उड़वा सकता, मैं अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता कि मैं कैसे चला गया हूं, मेरे साथ क्या क्या धोखे हुए हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सपने में, है ना, मन में जो उसकी इच्छा हो वो वस्तु अगर सपने में मिल जाती है तो वैसे ही वो प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी एक बार प्रेम आया था लेकिन वो सपने की बात ही टूट गया, यानी वो प्रेम मुझे पास आकर भी नहीं मिल पाया, मुझसे दूर हो गया, मेरी जो सारी आकांक्षाएं थी वो एक झूठ बनकर मिथ्या बनकर रह गई। चूंकि ये जो सुख का स्पर्श था वो पाते पाते मैं वंचित रह गया, है ना। मेरी जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं जगी, जो इच्छाएं जगी, अब वो मिथ्या यानी एक झूठ बनकर रह गई। मेरे पास वो सुख आया, मैं उसे छू पाता, उससे पहले ही वो दूर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरना चाह रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन कथा कैसे सुना सकता हूँ, है ना। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जो मेरे पास आलिंगन में यानी गले लगना, मेरे पास आ ही रहा था लेकिन मुस्कुराकर मुझे चिढ़ाकर भाग गया। अब तुम मेरे अनुभवों से अपने खाली जीवन को नहीं भर सकते हो। आगे पढ़िए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधाड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं ये जो अंत किया है कवि ने, ये बहुत ही अच्छा है। देखिएगा, देखिए इसमें क्या कहते हैं कवि, अब जो उन्होंने सपने देखे हैं, सुंदर सपने, उनके बारे में वो बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे सुखद पल आए थे या जो सपने मैंने देखे थे जिनको अब मैं याद करता हूँ तो उनके सहारे मैं एक जीवन बिता पा रहा हूँ। मैंने प्रेम को लेकर अनगिनत सपने संजोए थे लेकिन वो सपने केवल सपने रह गए। वास्तव में असल में जीवन में मुझे कुछ मिल ही नहीं सका। मैंने सोचा था कि मेरे पास भी प्रेम आएगा तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, है ना, ऐसे रहूँगा, उसका उसके साथ आनंद उठाऊँगा, उसका सम्मान करूँगा। बहुत से सपने सजाए थे अपने प्रेम को लेकर लेकिन वो सपने हमेशा सपने ही रह गए। मेरे सपने कभी सच नहीं हो पाए और मेरा जीवन खाली का खाली रह गया। फिर कवि जो है वो अपनी प्रेयसी के यानी प्रेयसी यानी प्रेमिका के सुंदर गालों का वर्णन कर रहे हैं। अरुण कपोल, ये जो लिखा है ना, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, अरुण कपोल यानी कपोल होते हैं गाल और अरुण यानी हल्की सी लालिमा जो होती है, तो जो लाल गाल हैं उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं जैसे सुबह की भोर होती है ना, जब सूरज नया नया निकल रहा होता है सुबह और लालिमा फैली होती है आकाश में, वैसी ही लालिमा उसके गालों की थी। और उसकी छवि जो है अब वो मेरे जीने का सहारा बन गई है क्योंकि वास्तविक जीवन में तो मुझे वो क्षण मिले ही नहीं, मेरे पास आकर भी वो मुझसे दूर चले गए। तो अब जो वो उसकी छवि मेरे दिमाग में है, जो उसके लाल लाल गाल जो मेरे यादों में है, अब बस वही मेरे जीने का सहारा है। और इसीलिए वो कभी काफी दुखी हैं और दुखी होकर क्या कह रहे हैं, तुम मेरी आत्मकथा को जानकर, मेरी जीवन की कथा को जानकर क्या करोगे। अपने जीवन को मैं बहुत ही छोटा समझता हूँ, है ना, अपने जीवन को बहुत ही छोटा समझता हूँ, इसीलिए मैं कोई भी कहानी नहीं सुनाना चाहता। और इस पंक्ति से हमें किस क्या पता चलता है, कवि की सादगी का, उनकी विनम्रता का, है ना। फिर वो क्या कहते हैं, ये देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, है ना, मेरा जीवन इतना छोटा साधारण है इसकी मैं क्या कहानियां तुम्हें सुनाऊं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यानी इससे अच्छा ये है कि मैं दूसरों की कहानियां सुनूं, दूसरों को समझूं, वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि मैं अपनी कहानी कहूं, क्योंकि मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी आत्मकथा कहने से बेहतर यह होगा कि मैं दूसरों की कथाएं सुनूं और स्वयं मौन रहूं यानी शांत रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, है ना, मेरी ऐसी साधारण सी भोली सी आत्मकथा है, तुम इसको सुनकर क्या करोगे। मेरी कहानी कहने का सुनाने का अभी तो वक्त ही नहीं है, मेरे अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। ये आखिरी लाइन में पता चलता है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या कहोगे करोगे, अभी वो समय नहीं आया है कि मैं अपनी कथा या अपनी कहानी सुनाऊं। मेरा जो अतीत है, मेरे जो दुख हैं, उनको ना कुरे दो, मौन व्यथा जो मेरी सोई है, ठीक है, उसको तुम ऐसा का ऐसा ही रहने दो, मुझे और कष्ट मत दो। व्यथा यानी कि जो मेरी स्थिति है, जो मेरा दुख है, वो अभी मौन है, शांत है, उसको जगाओ मत, ठंडा पड़ा रहने दो, वरना मुझे और दुख होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कविता आपकी पूरी होती है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि कवि ने अपनी आत्मकथा इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि पहली बात तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत ही साधारण है, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरे लोगों को उसमें कुछ जानने या समझने को मिले। दूसरा कारण, उन्हें लगता है कि अगर हम अपने जीवन की दुर्बलताएं, अपनी कमियां दूसरों को बताते हैं तो सिवाय जग हसाई के कुछ नहीं मिलता। यानी लोग जो होते हैं उसका आनंद उठाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन कोई आपको सहारा नहीं देता। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी कथाएं अपने ही पास रखें। ठीक है, तीसरा, उन्हें वो सपने याद आ रहे हैं जो प्रेम को लेकर उन्होंने अपने जीवन में देखे थे कि मेरे जीवन में प्रेम आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। बहुत से अनगिनत सपने उन्होंने संजोए थे लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो वो कहते हैं, वो सपने भले ही पूरे नहीं हुए लेकिन मेरे पास वो सपनों की यादें हैं, है ना। मेरी जो प्रेयसी है यानी जो मेरी जो प्रेमिका है, उसकी छवि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मन में बसी हुई है, उसके गालों की लालिमा मेरी आंखों के सामने है। और ये जो सुनहरी यादें हैं, इनको लेकर ही मैं एक अच्छा जीवन, अपना वर्तमान का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तुम मेरे जीवन को उधेड़ उधेड़ कर मत देखो, उसके अंदर मत जाओ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी कथाएं कहूँ, अपनी कहानियां कहूँ, इससे बेहतर है मैं दूसरों की सुनता रहूँ। और अंत में वो कहते हैं, अभी समय नहीं आया कि मैं अपनी कहानी कहूँ, मेरी जो व्यथा है वो मौन है, शांत है, मेरा अतीत शांत हो चुका है, मेरा दुख दर्द अब कहीं बैठ गया है कोने में जाकर, उसे दोबारा ढूंढ कर मत निकालो। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर वो अपनी कहानी लिखेंगे ना, तो जीवन में जो उनके बुरे अनुभव रहे होंगे, जो चीज़ें उनको असहनीय रही होंगी, जो दुख दर्द उन्होंने सहे होंगे, वो दोबारा उभर कर आएंगे, है ना। अगर वो वापस से अपनी कहानी लिखने बैठेंगे तो वो दुख दर्द दोबारा उभर के आएंगे जो कि वो नहीं चाहते हैं। जैसे तैसे जीवन मन के एक कोने में उन्होंने अपने दुख दर्द को बैठा के शांत कर लिया है, तो अब वो उसे नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ आपकी ये जो कविता है वो पूरी हो जाती है। अब प्रश्नोत्तर हम अगले ऑडियो में करेंगे। इस ऑडियो में हम शब्द संपदा देख लेंगे, यानी जो कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। पेज नंबर 30 पर आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 30 पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मधुप यानी मन रूपी भौरा। वैसे मधुप भौरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहाँ कवि ने रूपक अलंकार का उपयोग किया है, भौरे को मन रूपी बताया है। ठीक है, मन को भारा रूपी बताया है। मधुप हो गया मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा यानी अंतहीन विस्तार। किसका विस्तार? आकाश का, क्योंकि नीलिमा दी गई है ना। अनंत नीलिमा यानी ऐसी नीला नीलिमा जिसका कोई अंत ही ना हो, अंतहीन विस्तार आकाश का। व्यंग मलिन यानी खराब ढंग से निंदा करना, यानी किसी का मजाक बनाना। गागर रीति यानी कि खाली घड़ा। वैसे गागर होता है घड़ा और रीति यानी खाली खाली घड़ा, लेकिन यहाँ पे कवि ने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि उनका मन ऐसा है जिसमें कोई अब भाव नहीं बचा, मन जो है उनका खाली हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसा मन जिसमें कोई भी भाव नहीं है। प्रवंचना यानी धोखा या छलावा, छल करना। मुस्कियाकर यानी मुस्कराकर। अरुण कोपल यानी लाल गाल। अनुरागनी उषा प्रेम भरी भोर। स्मृति पाथे स्मृति रूपी संबल, है ना। जो उन्होंने कहा ना कि जो स्मृति है, जो यादें हैं उनके प्रेयसी की, वही अब उनके जीने का सहारा है। संबल यानी सहारा। पंथा यानी रास्ता या राह। कंथा यानी अंतर्मन गुदड़ी। ठीक है, यह भी जाने, आपको पाठ के अंत में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी जाती है तो वही यहाँ पे भी दी गई है। देखिए क्या है, प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस प्रेमचंद ने सन 1930 से 1936 तक निकाली थी। पुनः सन 1986 से यह साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और इसके संपादक राजेंद्र यादव हैं। प्रगतिशील चेतना यानी कि जो विचार थे उस समय वो प्रगतिशील थे, देश की उन्नति के लिए थे, नए विचार थे, आधुनिक विचार थे। मासिक पत्रिका थी, यानी मासिक यानी एक महीने में एक बार निकलने वाली, ठीक है। हंस नाम था इसका और इसके संपादक कौन थे, प्रेमचंद जी, है ना। यानी जो एडिटिंग करते हैं, क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें प्रेमचंद जी देखते थे। इन्होंने कितनी साल तक, 6-7 साल तक ये पत्रिका निकाली थी, 1930 से 1936 तक, ठीक है। 1936 में प्रेमचंद का देहांत हो गया था, तो ये इस पत्रिका का संपादन वहाँ पे फिर बंद कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 50 सालों बाद ये पत्रिका दोबारा निकली, ठीक है, 1986 में, 1986 में 50 साल बाद दोबारा इस पत्रिका का संपादन शुरू हुआ। और ये जो साहित्यिक पत्रिका है, इसका नाम अभी भी वही है, हंस, लेकिन अब इसके संपादक कौन है, राजेंद्र यादव जी। ये राजेंद्र यादव जी इसका संपादन कार्य देख रहे हैं। यानी एक ही पत्रिका जो पहले 6-7 साल प्रेमचंद जी ने संभाली, और उसके 50 साल बाद ब्रेक लग गया उस पर, और फिर से वो राजेंद्र यादव जी के संपादन में दोबारा शुरू की गई। अगला पॉइंट, बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसकी रचना सन 1641 यानी 1641 में हुई और ये पद्यात्मक है। तो जितनी भी आज तक आत्मकथाएं मानी जाती हैं, लेखकों ने जो अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, अपने जीवन को व्यक्त किया है, उनमें सबसे पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, अर्ध कथानक। अर्ध कथानक इसका नाम है। अगर आपसे कभी भी सवाल आएगा हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो आप बोलेंगे अर्ध कथानक, जिसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। इन्होंने ये अपनी आत्मकथा कब लिखी थी, 1641 में, यानी 1641 में, और ये पद्यात्मक है, यानी कविता के रूप में लिखी है उन्होंने, गद्य में नहीं, जैसे कहानियों की तरह, निबंध की तरह ऐसे नहीं लिखी है, कविता के रूप में लिखी है। आत्मकथ्य का एक अन्य रूप यह भी देखें, अब वो क्या कह रहे हैं, आत्मकथा का एक रूप और भी देखिए, ये किसकी है, देखिए कवि बच्चन की आत्म परिचय कविता का अंश, जो एक महान और प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी को तो सभी जानते होंगे ना, उन्हीं के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसका शीर्षक था आत्म परिचय, ठीक है। और इसी आत्म परिचय का जो कविता है, इसका थोड़ा सा अंश यानी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपको दिया गया है समझाने के लिए कि उन्होंने कैसे अपनी आत्मकथा लिखी। देखिए, पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिससे सुनकर जग झूम झूम कर लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, ठीक है। खंडर का भाग यानी कि खंडर क्या होता है, टूटी हुई इमारत, यानी मैं अपने अंदर एक टूटा हुआ हिस्सा लेके घूमता हूँ। मैं रो रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं गाना गाता हूँ, मैं फूट पड़ता हूँ रो के, मतलब जब अपने कवि ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो दुखी होकर अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तो लोगों को लगता है मैं छंद बना रहा हूँ, यानी मैं कविता बना रहा हूँ। मुझे लोग जो संसार है ये कवि कहकर मत अपनाओ, क्यों अपनाते हो, मुझे तो इस दुनिया का एक दीवाना मानो, है ना। मैं दीवानों का वेश, दीवानों का रूप लिए घूमता हूँ, मादकता यानी नशा जैसा लिए घूमता हूँ, ऐसा जिसको सुनकर तुम जो जग है संसार है वो झूमेगा झुकेगा लहराएगा, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी मेरी कविता जो है वो सबको आनंद देती है, लेकिन असल में वो कोई गाना या छंद बनाना नहीं होता, बल्कि मेरे मन के भाव होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि आत्मकथा में जो कवि है वो क्या क्या महसूस कर रहा है। हम तो एक साधारण कविता के रूप में पढ़ लेते हैं, लेकिन असल में कवि ने एक कविता को क्या सोचकर लिखा होता है, उसके मन में क्या क्या भाव आए होते हैं, क्या भावनाएं जागृत हुई होती हैं, यह सिर्फ उस कवि को ही पता होता है जिसने वो कविता लिखी होती है, ठीक है। तो यहाँ आपकी कविता पूरी होती है, जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले ऑडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।